हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये वही रूम था जहाँ उसने झलक के साथ पहली बार रिश्ता बनाया था। उस रूम में ले जाकर सिद्धार्थ ने झलक को कमरे की एक दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथ से जकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? हाँ, एक बात बताओ, जब तुम पर किसी तरह की कोई मुसीबत में थी तो तुम मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर सकती थी? हाँ, और तुमने मेरी जगह उस आर्यन को फ़ोन किया? बोलो, जवाब दो मुझे। सिद्धार्थ गुस्से भरी आंखों से झलक की ओर घूर रहा था। तभी झलक को याद आया कि हाँ, जब वो किडनैप होने वाली थी तब उसने किसी अजनबी का फ़ोन लेकर आर्यन को मैसेज छोड़ा था और शायद सिद्धार्थ को वो मैसेज मिल गया होगा, इसीलिए वो उस पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। तभी झलक ने अपने मुंह पर से सिद्धार्थ के हाथ की पकड़ को ढीला करते हुए हड़बड़ाकर लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, वो मुझे तुम्हारा नंबर याद नहीं था। अब तो सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ गया और नाखुश होकर चिढ़ते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें मेरा नंबर याद नहीं था लेकिन तुम्हें आर्यन रायचंद का नंबर याद था। सिद्धार्थ ने एक बार भी झलक के रंगरूप को लेकर किसी तरह की कोई जिक्र नहीं किया। अब झलक ने थोड़ा सा तेजी से उसका हाथ अपने मुंह पर से झटक दिया। अब सिद्धार्थ की उंगलियों के निशान साफ साफ झलक के खूबसूरत गोरे बेदाग चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब तो सिद्धार्थ आश्चर्य और हैरानी से झलक को देखने लगा, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई बार झलक को टॉर्चर किया था। एक बार भी उसके बदसूरती के आगे उसके उंगलियों का कोई निशान दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज उंगलियों का हल्का सा तेज दबाव होते ही झलक के चेहरे पर सिद्धार्थ की उंगलियों के निशान छप गए थे। तब झलक सिद्धार्थ को घूरते हुए बेरुखी और दमदार आवाज में बोली, देखो, मैंने आर्यन को फोन क्यों किया और तुम्हें फोन क्यों नहीं किया, ये मेरा मसला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम सिर्फ मेरे मुंह बोले भाई हो, मेरे सगे भाई नहीं हो कि मैं तुम्हें किसी तरह का कोई जवाब दूंगी, समझे? तुम अब फिलहाल मुझे इन कपड़ों में इरिटेशन हो रही है, मुझे ये कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते। क्योंकि झलक ने पानी के जहाज में सर्विस देने वाले मेटर्स के कपड़े पहन लिए थे वहां से निकलने के लिए, अब उन कपड़ों में से उसे काफी ज्यादा असहज महसूस हो रहा था और वो सिद्धार्थ की ओर देखकर मुंह बिचकाते हुए परेशान होकर बोली, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं पहनने के लिए? अब जैसे ही झलक ने पूरी तरह से बात को बदलते हुए सीधे सीधे कपड़ों की बात की, अब सिद्धार्थ उसे घूर कर देखने लगा। तब झलक अनजान बनते हुए बोली, तुम इस तरह से मुझे क्यों घूर रहे हो? पूरे 10 दिन हो गए ना? नहीं, मुझे इस कपड़े से बदबू आ रही है और तुम हो कि मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो। जैसे ही झलक ने अपने बेबाक अंदाज में सिद्धार्थ को ये जवाब दिया, सिद्धार्थ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फटाफट से वो अपने अलमारी के पास गया। उसने सोचा कि इस लड़की के साथ बकबक करने से अच्छा है कि उसे कपड़े ही दे दूं। तो ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने जल्दी ही एक टॉप और एक ढीला प्लाजो निकालकर झलक के हाथों में थमा दिया। अब तो झलक सिद्धार्थ के कमरे में इस तरह लड़कियों के कपड़े देखकर चौंक गई। अचानक झलक को याद आया कि जब वो यहाँ पर एक बार पहले भी आई थी तब सिद्धार्थ दो लड़कियों के साथ यहाँ मौजूद था। अचानक झलक खिलखिलाकर हंसने लगी और वो सिद्धार्थ की ओर देखकर चहकते हुए बोली, ये कपड़े तो शायद आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मंगवाए थे ना, जो सब यहाँ मौजूद थी? झलक ने चुटकी लेते हुए कहा और बिना सिद्धार्थ की कोई बात सुने सीधा बाथरूम में घुस गई। अब सिद्धार्थ को पहले तो उसका जवाब सुनकर गुस्सा आया, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि झलक ने किस अंदाज में ये बात बोली है, तो अचानक सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा था कि झलक उसे छेड़ रही है। वहीं झलक के बाथरूम में जाने के बाद सिद्धार्थ कमरे से बाहर आ गया और उसने रौनित को इंस्ट्रक्शंस दिए कि अनामिका जहां जाना चाहे उसे वहां ले जाकर छोड़ दो, और उसके बाद वो अपने लिए कुछ ड्रिंक की बोतल उठा ली और कमरे में लेकर आने लगा। झलक को बाथरूम में गए आधे घंटे से ज्यादा हो गए थे, लेकिन सिद्धार्थ ने सोचा कि झलक अपने आप नहाकर कमरे से बाहर आ जाएगी। लेकिन आधे घंटे बाद भी जब झलक कमरे से बाहर नहीं आई, सिद्धार्थ ने सोचा कि उसे अंदर जाकर चेक करना चाहिए। साथ ही साथ वो अपने साथ कुछ ड्रिंक की बोतल भी लेकर कमरे में आया था, और जैसे ही वो अंदर आया वो पूरी तरह से चौंक गया। झलक ने वो टॉप और प्लाजो पहन रखा था, हालांकि टॉप थोड़ा शॉर्ट था और झलक बिल्कुल पूरी तरह से बेड पर फैल कर सो रही थी। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसे देखेगा। लड़कियों वाली ही तो उसकी सोने की मुद्रा थी। उसने खुद को बेड पर बेढंगे तरीके से नीचे की तरफ फैला रखा था और अपने हाथों को फैलाकर पूरे बेड पर कब्जा किए हुए बेपरवाही से सोई हुई थी। एक पल को झलक को बेपरवाही से सोता हुआ देखकर सिद्धार्थ को लगा कि वो बड़ी ही क्यूट और मासूम लग रही है, क्योंकि झलक ने किसी तरह का कोई दिखावा नहीं किया था कि वो इस तरह ऐसे टूट जाएगी। फिलहाल उसके मिसकैरेज को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, मुश्किल से 25-30 दिन हुए होंगे। सिद्धार्थ अगर उसके साथ फिजिकल होता है तो झलक हर्ट हो सकती है, ये सोचते हुए उसने झलक के साथ किसी तरह की कोई हरकत नहीं की। लेकिन फिलहाल उसे अपने शरीर में कुछ ज्यादा ही गर्मी महसूस होने लगी थी, इसीलिए वो सीधा बाथरूम में चला गया और नहाने लगा और काफी देर बाद खुद को थोड़ा नॉर्मल करके वो वॉशरूम से बाहर आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, अब उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि झलक अब बिल्कुल सीधा लेटी हुई थी। उसने अपने पैर पूरी तरह से उल्टी सीधी फैलाई हुई थी। उसका जो छोटा टॉप था वो ऊपर चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर के कुछ अंग सिद्धार्थ को साफ दिखाई देने लगे। अब तो सिद्धार्थ का गला पूरी तरह से सूखने लगा था और वो सोचने लगा कि क्या ये लड़की मुझे इनविटेशन दे रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे किसी तरह का कोई तकलीफ ना दूं, लेकिन ये इस तरह की हरकतें करेगी तो मैं भला चैन से कैसे रहूंगा। अब तो सिद्धार्थ के हार्मोनल सिस्टम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। उसका दिल कह रहा था कि अभी वो जाकर पूरी तरह से झलक को दबा ले, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके एक बार फिर झलक के ऊपर चादर डालकर उसे अच्छी तरह से ढक कर एक बार फिर नहाने के लिए चला गया। कितनी देर बाद वो फिर नहा कर आया और अब आकर रुक गया, क्योंकि वो भी थक चुका था। वो भी जाकर चुपचाप झलक के ठीक बराबर में लेट गया और अभी उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक झलक ने अपना एक टांग और एक हाथ उसके ऊपर रख दिया। उसे लगा कि शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए सीधा वहां से निकलकर वो ड्रिंक बार में चला गया। अब झलक आराम से 4-5 घंटे सो गई थी और जैसे ही वो सोकर उठी, उसने देखा कि वो कमरे में अकेली है। झलक अपने आप को थोड़ा बेहतर और फ्रेश महसूस कर रही थी। अब उसने सोचा कि उसे सबसे पहले अपने माता पिता को कॉल कर लेना चाहिए, उनकी खबर लेनी चाहिए कि उनके हालचाल कैसे हैं। और जल्दी उसे वहां पर रखा हुआ एक लैंडलाइन फोन दिखाई दिया। झलक ने जल्दी ही फोन से अपनी माँ का नंबर मिलाया। पहली बार में तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। झलक को कुछ चिंता होने लगी थी। वो सोचने लगी, क्या आकांक्षा और उसके पेरेंट्स ने उनके साथ कुछ किया होगा। लेकिन जैसे ही दूसरी कॉल में स्नेहा जी ने फोन उठाया, झलक ने सीधा सवालों की झड़ी लगा दी। मॉम, आप कैसे हो? पापा कैसे हैं? रोहन कैसा है? सब ठीक है ना? बिना कुछ सुने झलक ने जल्दी ही उनके हालचाल लेने शुरू कर दिए।
तब स्नेहा जी मुस्कुराते हुए प्यार भरी आवाज में उसे टोकते हुए बोली, अरे रे बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये बता, जो तेरी विदेशी ट्रिप थी वहां से वापस आ गई? एक्चुअली आर्यन बेटा ने बताया था कि तुम काम के सिलसिले में बाहर गई हुई हो और आर्यन ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था बेटे। अब जैसे ही उन्होंने इस तरह की बात की, झलक हैरान हो गई। साथ साथ उसे अब याद आया कि उसने आर्यन को अपने माँ बाप का ध्यान रखने के लिए भी कहा था, तो इसीलिए उसे कुछ तसल्ली हुई कि चलो उसने ने कोई काम तो ढंग का किया।